जानवी मुस्कुराती है और हाँ में सर हिलाते हुए किचन से चली जाती है। जानवी को जाता हुआ देख अरुणिमा के चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कान आ जाती है। किचन का सारा काम समेटकर अरुणिमा अपने कमरे की तरफ जाती है। उसे पता था आस्तिक इस वक्त कमरे में नहीं होगा, क्योंकि वो खाना खाने के बाद ही अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया था। कमरे में पहुंचकर अरुणिमा देखती है तो पूरा कमरा फैला हुआ था। आस्तिक के कपड़े एक जगह रखे हुए थे, उसकी घड़ी, पर्स और बेल्ट कहीं भी पड़े हुए थे। अरुणिमा ना में सर हिलाती है और जाकर उस बिखरे हुए कमरे को समेटने लगती है। आस्तिक सच में किसी छोटे बच्चों की तरह था। वो कभी भी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता था। अरुणिमा ने उसके कपड़े उठाए और लॉन्ड्री बास्केट में रखे पर्स और घड़ी को ड्रेसिंग टेबल पर रखा। वो उसकी बेल्ट को फोल्ड करके अलमारी की तरफ रखने जाती है। अरुणिमा ने आस्तिक की अलमारी खोला और उसमें बेल्ट वाली जगह में बेल्ट को रख दिया। पर इससे पहले कि वो अलमारी बंद करती, वो देखती है आस्तिक का अलमारी का लॉकर खुला हुआ है। अरुणिमा ये देखकर हैरान हो गई थी। आस्तिक कभी भी अपना लॉकर खोलकर नहीं रखता है। लगता है शाम को जब आस्तिक रूम में आया था तो जल्दबाजी में वो लॉकर खुला रह गया। लेकिन अरुणिमा उस लॉकर को हाथ लगाने से डर रही थी, क्योंकि काफी दिन हो गया था आस्तिक ने उसे सजा नहीं दी थी। अब अरुणिमा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से आस्तिक उसे सजा दे। पर वो लॉकर ऐसे खुला भी तो नहीं रख सकती थी। उसने धीरे से लॉक को बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तभी उसमें से एक लिफाफा नीचे गिर जाता है। अरुणिमा डर जाती है। अगर आस्तिक ने उसे देख लिया तो उसे लगेगा कि उसी ने लॉकर खोला है। वो जल्दी से लिफाफा उठाकर वापस लाकर में रखती है, पर तभी उस लिफाफे में से दो तीन तस्वीरें नीचे गिर जाती है। अरुणिमा देखती है कि कुछ तस्वीरें जमीन पर गिरी हुई हैं। वो तस्वीरों को उठाकर देखने लगती है। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इसमें चार छोटे छोटे बच्चे थे। अरुणिमा आस्तिक को पहचान लेती है। पृथ्वी, कीर्ति और प्रणाली की भी तस्वीर आस्तिक के साथ ही थी। वो चारों एक साथ खड़े थे और काफी अच्छे लग रहे थे। प्रणाली की बचपन की तस्वीर देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये लड़की बड़ी होकर इतनी बदतमीज निकलेगी। तभी अरुणिमा देखती है कि इन तस्वीरों में पीछे एक आदमी की तस्वीर है, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला किया गया है। अरुणिमा हैरानी से दूसरी तस्वीर उठाती है। उसमें भी पृथ्वी एक औरत की गोद में था। अरुणिमा देखती है कि ये आस्तिक की माँ की तस्वीर है, क्योंकि उसने आस्तिक की माँ की तस्वीर कमरे में देखी थी। पर इसमें भी उस आदमी का चेहरा पूरी तरीके से काला किया गया था। अरुणिमा हैरानी से देखती है। बाकी सारी तस्वीरों में भी किसी में कीर्ति है तो किसी में प्रणाली, और वो सारी तस्वीर में भी जो आदमी है उसका चेहरा काला किया हुआ है। अरुणिमा एक पल के लिए हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये कौन आदमी है जिसका चेहरा काला कर रखा है और ये तस्वीर में मौजूद। अरुणिमा के दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है, कहीं ये राजा साहब के पिता तो नहीं है? तभी अरुणिमा हैरानी से अपने मन में कहती है, मैंने यहाँ पर सबके बारे में बात करते हुए सुना है। राजा साहब अपनी माँ के कमरे में रहते हैं और कई बार उनसे बातें करते हैं। सारे भाई बहन आपस में मिलकर अपने बचपन की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने कभी राजा साहब से उनके पिता के बारे में नहीं सुना है। उनके पिता कहाँ हैं? अरुणिमा उस तस्वीर को देखकर हैरानी से कहती है, कहीं ये उनके पिता तो नहीं है? अगर ये उनके पिता हैं तो फिर इनका चेहरा इस तरीके से काला क्यों किया हुआ है? तभी एक तस्वीर में, जिसमें आस्तिक और उसकी गोद में कीर्ति थे और उसमें भी उस आदमी के चेहरे पर काला किया गया था, अरुणिमा देखती है उसके हाथ में एक घड़ी है। अरुणिमा हैरानी से घड़ी को देखकर कहती है, ये घड़ी मैंने पहले भी कहीं देखी है, पर कहाँ देखी है मुझे याद नहीं आ रही है। तभी बाहर से अरुणिमा को कुछ आवाज आने लगती है। वो जल्दी से उन तस्वीरों को लिफाफे में डालकर लॉकर में रखती है और लॉकर बंद कर देती है। ये एक नौकर था जो पानी का जग ले जा रहा था और गलती से उसके हाथ से पानी गिर गया था। अरुणिमा देखती है रात के 2 बजने को आए हैं, लेकिन आस्तिक अभी तक वापस नहीं आया है। अरुणिमा को भी नींद नहीं आ रही है। कल प्रणाली की सगाई है। अगर आस्तिक अभी नहीं सोएगा तो कल उसे थकान महसूस होगी। अरुणिमा को पता है कि आस्तिक इस वक्त कहाँ होगा, इसलिए वो अपने कमरे से निकलती है और सीधे आस्तिक की माँ के कमरे की तरफ चल देती है। जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उसके कानों में पियानो की धुन बढ़ती जा रही थी। अरुणिमा धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होती है तो देखती है आस्तिक पियानो तो बजा रहा है, पर अरुणिमा के कमरे में जाते ही उसने पियानो बजाना बंद कर दिया। उसके हाथ अभी भी पियानो के बटन पर थे। अरुणिमा धीरे से आस्तिक के पास जाती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। आस्तिक की आंखें इस वक्त बंद थीं और उसके सामने एक दृश्य चल रहा था। आस्तिक तब छोटा था और वो घर के कोने में प्रणाली को लेकर खड़ा था। आस्तिक और प्रणाली इस समय दोनों रो रहे थे। सामने आस्तिक की माँ खड़ी थी और वो किसी आदमी के पैरों पर गिरते हुए कह रही थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आप ही के बच्चे हैं, आप इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? पर उस आदमी ने आस्तिक की माँ को लात मारकर खुद से दूर किया और कहा, मैं तुम्हारे गंदे खून को कभी नहीं अपना सकता हूँ। इनमें सिर्फ तुम्हारा गंदा खून है, इसीलिए इन्हें मेरे सर पर मढ़ने की कोशिश मत करना। तुम और तुम्हारी गंदगी जिए चाहे मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। ये कहते हुए वो आदमी घर से निकल जाता है। आस्तिक की माँ जमीन पर बैठे हुए जोर जोर से रोने लगती है और अपना सीना पीटने लगती है। आस्तिक रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों रो रही हो माँ तुम? इस घटिया आदमी के पीछे अपने आंसू बर्बाद क्यों कर रही हो? तभी आस्तिक की माँ पलटकर गुस्से में आस्तिक को देखती है और आस्तिक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आस्तिक हैरानी से अपनी माँ को देखता है तो उसकी माँ गुस्से में कहती है, खबरदार जो उन्हें कुछ कहा तो। आस्तिक अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वो झटके से अपनी आंखें खोलता है।